सफ़ा नंबर 279। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर और आप ही की तरफ से। फरमाया, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि कांग्रेसी ख्याल मुसलमान अलहाद और लादीनी की जिस दावत को दनस्ता या नादनस्ता तकवीयत पहुँचा रहे हैं, वो रोज़ बरोज़ तरक्की पर है। मैंने इनके नज़रियात से खूब वाकफ़ हूँ। पढ़ा लिखा तबका तो खैर कुरान व हदीस से दूर हट चुका है और समझता है कि वतनी कौमियत से मुफर की कोई सूरत नहीं। रहे अवाम, सो इन में कांग्रेसी ख्याल उलमा के ज़ेरे असर अब ये तहरीक फैल रही है कि वतनी कौमियत को इस्लाम की तायद हासिल है। गैर कांग्रेसी उलमा में कौन है जो इन्हें समझाए कि जिन सियासी और इज्तमाही हकायक के पेश नज़र ये तहरीक फैलाई जा रही है, इसकी सही नवीयत क्या है और बतौर एक निज़ाम मदनीयत इस्लाम की तालीमात क्या? अगर आप भी खामोश रहे तो इन मगालतों का अजाला कैसे होगा जो इस बाब में पैदा हो चुके हैं। कांग्रेसी ख्याल अखबारात को देख लीजिए, मौलाना हुसैन अहमद की हमायत में किस तरह मजमून पर मजमून लिखा जा रहा है, लेकिन हमारे अखबार खामोश हैं। आपका ये मजमून शाया हो गया तो मुझे यकीन है वैसा ही मुअसर साबित होगा जैसे इस्लाम और अहमदीयत। नंबर एक, यानी वो तवील बयान जो किताबी शक्ल में बाअनवान इस्लाम और अहमदीत शाया हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जवाब में लिखा गया। 9 बज गए, चौधरी साहब आ गए तो इनसे फिर मजमून के बारे में बातचीत हुई। चौधरी साहब ने भी मेरी राय से इत्तेफाक किया। हजरत अलामा ने फरमाया, बहुत अच्छा, अगर राय यही है तो इस अमर का अहतमाम करना चाहिए कि मजमून 2-1 रोज़ ही में कलम बंद हो जाए। फिर अर्शाद हुआ, तुम्हारे पास क्या वो रुबाई महफूज है जो मैंने कुछ दिन हुए मौलाना के बारे में लिखवाई थी? सफ़ा नंबर 290। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ महफूज है। अर्शाद हुआ, इस रुबाई की तस्सीह कर दो। मैंने शुरू के 2 मिसरे यूं बदल दिए। नंबर एक, पहले ये 2 मिसरे यूं थे, नदानिय नुक्ता दीने अरब रा के गुफ्तगी रोज रोशन तेरा शब रा, कैसे को पंजा जद मलक व नसब रा, नादाना नुक्ता दीन अरब रा। मैंने ब्याज उठाई और तमीले अरशाद कर दी। हजरत अलामा ने रुबाई सुनी और इत्मीनान फरमाया और ब्याज अलमारी में रख कर मैं फिर अपनी जगह पर आ बैठा। हजरत अलामा ने रुबाई में जो इस्तलाह फरमाई नहायत मुनासिब थी। पहली सूरत में हजरत अलामा जो कहना चाहते थे इनका इजहार बाद के 2 मिसरों में होता था, अब इनका माफी जमीर वाजे था और आखिरी 2 मिसरे इनके दावे और दलील पूरा कता या रुबाई अरमगाने इजहाज में मौजूद है। करशी साहब आ गए, राजा साहब का इंतज़ार था, देर तक नशिस्त रही। सफ़ा नंबर 291। 4 शंबा, 23 फरवरी। बड़ा मसरूफ़ था, सिर्फ मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हो सका। बाहमदुल्लाह हजरत अलामा की तबीयत अच्छी है। मैं जब तक बैठा अवारज ही के बारे में सवालात करता रहा, नींद का पूछा तो अरशाद हुआ, निस्बतन बेहतर है। फरमाया, करशी साहब सुबह सवेरे ही आ गए थे, नब्ज़ देखी और कुछ दवाएं तजवीज़ कर गए हैं, लेकिन हकीम साहब के ख़त का इंतज़ार है, इनकी दवाएं आ जाएं तो क्या अच्छा हो। मजमून का पूछा तो फरमाया, चौधरी साहब अभी दफ्तर गए हैं, इन्हीं हदायत दे दी गई हैं, 2-1 रोज़ में मरतब हो जाएगा, फिर नज़रसानी भी कर ली जाएगी। मेरा जी चाहता था कि हजरत अलामा की खिदमत में कुछ देर और बैठूं, लेकिन 2-4 ज़ाती काम थे। मैंने अजहार मजदूरी करते हुए इजाज़त तलब की तो फरमाया, मेरी सेहत का तो यही हाल है, कामों को नज़रअंदाज ना होने दो। मैंने मजबूरन इजाज़त ली, मगर जवेद मंजर से बाहर आया तो हजरत अलामा के अल्फाज से बड़ा दिल गिरफ्ता, मेरी हालत का तो यही हाल है, यानी सेहत बेहतर नहीं हो रही। कैसे हौसला फरसा अल्फाज थे और कैसी तशवीश अंगेज सूरत हाल। कदम कदम पर अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था और कदम कदम पर ये दुआ कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। शाम को फिर देर से जवेद मंजिल पहुंचा, अली बख्श से मालूम हुआ हबाब सब जमा हैं। चौधरी साहब, राजा साहब, करशी साहब, मैं ख्वाब का मैं दाखिल हुआ, सलाम अर्ज़ किया और मिजाज पूछ कर बैठ गया। मीम शीम भी आ गए। हजरत अलामा की तबीयत बड़ी मखमल थी, देर तक नशिस्त रही और गर्ज़ ये कि हजरत अलामा कोई बात ना करें, अलबत्ता हम इनकी खबरगीरी के लिए बैठे रहे। सफ़ा नंबर 292। जुमारात 24 फरवरी। चाश्त के करीब हाजिर हुआ, हजरत अलामा आराम फरमा रहे थे। अली बख्श से खैरियत पूछी, इसने कहा आँख लग गई है, रात बेख्वाबी और जीक की तकलीफ़ रही। करशी साहब हसबे ममूल नबस देख गए हैं, खासी देर तक बैठे रहे, कुछ दवाएं तजवीज़ की थी, ले आया हूँ, चौधरी साहब भी हो गए हैं। मैंने सोचा मेरा ठहरना मुनासिब नहीं, हजरत अलामा आराम फरमा लें, रात की बेख्वाबी से तबीयत मखमल होगी। शाम को हाजिर खिदमत हुआ तो हजरत अलामा की तबीयत बड़ी शगुफ्ता थी, मालूम हुआ दिन में बहुत काफ़ी सो लिए थे, बेख्वाबी और बेख्वाबी की वजह से जो अजमलाल था दूर हो चुका है। चौधरी साहब सरे शाम ही आ गए, फिर करशी साहब तशरीफ़ ले आए और थोड़ी देर के बाद राजा साहब मीम शीम तो चंद दिनों से जुवेद मंजिल ही में उठ आए हैं, दिन रात हजरत अलामा की खबरगिरी में मसरूफ़ रहते हैं। कशी साहब आए तो हजरत अलामा की तबीयत और बेहतर होगी, फरमाया मेरा इलाज यही है कि हकीम साहब मेरे पास बैठे रहें। हजरत अलामा ये अक्सर फरमाया करते थे और ये बात थी भी ठीक, इसलिए कतई नज़र इस खलूस मोहब्बत और दिल सूजी के जो कर्शी साहब को हजरत अलामा से थी। कर्शी साहब आते तो इन्हें इत्मीनान हो जाता कि अवारस की जैसी भी कैफियत होगी कर्शी साहब इसका कोई ना कोई मदावा सोच लेंगे। दरअसल अब हजरत अलामा का मर्ज जिस मरहले पर पहुंच गया था, इसके पेशे नज़र ज़रूरी था कि इनके इत्तेमादार और मुआलज हर वक्त इनकी खिदमत में हाजिर रहें, हर वक्त खबरगिरी होती रहे। सफ़ा नंबर 293। हम खामोश बैठे थे, अलबत्त कभी कभी हजरत अलामा के पास खातर से के खामोश ही से घबरा ना जाएं, लीग और कांग्रेस या यूनियनिस्ट पार्टी की बात छेड़ देते, या ये जिक्र होने लगता कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुसलमानों को कैसे वरगलाया जा रहा है। लेकिन फिर जैसे दफ्तन कोई ख्याल आ गया हो, हजरत अलामा मजमून के बारे में चौधरी साहब से सवाल करने लगे, चौधरी साहब मुख्तसरन जवाब देते, हजरत अलामा से सवाल करने लगे, चौधरी साहब मुख्तसरन जवाब देते। हजरत अलामा अगरचा बामुतमिन लेटे सवालात कर रहे थे, लेकिन हमें परेशानी थी कि सेहत की इस हालत में इस सिलसिला सवालात का कोई नागवार असर तो नहीं होगा, मजमून का सुनना कैसे हो सकेगा। इसकी तनकीद और तरमीम व इसलाह के साथ साथ कता व बरीद भी तो होगी, यूं भी हजरत अलामा की तबीयत पर भार पड़ेगा और अंदरी सूरत कहीं ऐसा ना हो इनके अवारज कोई खराब असल कबूल कर लें, अवारज की शिद्दत में तो अजाफा नहीं होना चाहिए। हजरत अलामा को आराम की ज़रूरत है, वो इस मेहनत के कैसे मुतहम्मल होंगे। सफ़ा नंबर 294। जुमातुल मुबारक 25 फरवरी। दिन भर मसरूफियत रही, चुनच्चा बावजूद कोशिश के कि ज़्यादा देर ना होने पाए जुवेद मंजिल पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे, सलामत साथ थे। अव्वल बोर्ची खाने का रुख किया ताकि अली बख्श से हजरत अलामा की कैफियत मिजाज मालूम कर लें। अली बख्श ने कहा, चौधरी साहब और करशी साहब हाजिर खिदमत हैं, हजरत अलामा की तबीयत निस्बतन बेहतर है लेकिन हैं बड़े मखमल। हम लोग कमरे में दाखिल हुए, सलाम अर्ज किया और खैरियत मिजाज पूछी तो हसबे ममूल फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब मीम शीम और रहमा। हजरत अलामा का बदन दाब रहे थे, करशी साहब भी पलंग से लगे बैठे कभी कभी हजरत अलामा का हाथ और उंगलियां सहलाना शुरू कर देते। सलामत ने कहा, मैं भी शरीक स्वाब होना चाहता हूँ, और आगे बढ़कर हजरत अलामा की कमर दाबने लगा। मैं भी पैंती पर एक तरफ होकर बैठ गया। पिछले 2 रोज़ से हजरत अलामा के अवारज में खासी शिद्दत पैदा हो गई है, ज़्यादातर तकलीफ दमे की है, डॉक्टर जमीयत सिंह की दुआ से फ़ायदा तो हुआ लेकिन ममूली, हकीम नबीना साहब के खत का इंतज़ार है और उनकी दवाओं का भी। हजरत अलामा बड़े मखमल हैं, एक नई शिकायत दर्द कमर की है और खासी तकलीफ़ का बायस, फरमाया नींद बहुत कम आती है, जीक की तकलीफ़ भी बढ़ गई है। अरशाद हुआ, मेरा ख्याल है ये खराबी 21 फरवरी के जोशांदे से पैदा हुई। मैंने अर्ज़ किया, अब्रे शम को गलबन अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया गया था, मुमकिन है इसमें कुछ समी असरात मौजूद हों, मैंने तो इस वक्त भी अर्ज़ किया था जो शानदार ना पीजिए। कर्शी साहब की भी यही राय थी। सफ़ा नंबर 295। कर्शी साहब का ये भी ख्याल था कि अगर दमे की तकलीफ़ बढ़ गई है तो हमें इसके तदारक का मौका देना चाहिए था, मतलब ये था कि एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल ना की जाती, लेकिन मैंने इस राय का इजहार नहीं किया। हजरत अलामा को तकलीफ़ थी और मुनासिब नहीं था कि तब्दीली इलाज का मसला छेड़ दिया जाता। आधा पौन घंटा यूं ही नशिस्त रही। इसी असना में अली बख्श कई बार कमरे में आया, कभी हजरत अलामा के शाने दबाता, कभी चौधरी साहब पर कोई फिक्रा चस्त कर देता। हम लोग भी हजरत अलामा की तफरीक की खातर के लिए कोई ना कोई बात छेड़ देते, कभी कांग्रेस कभी यूनियनिस्ट पार्टी की। हजरत अलामा फरमाते, कांग्रेस के बारे में कुछ ना कहा जाए, कहीं शाह साहब यानी सलामत बुरा माने। सलामत हंस देते, कहते मैं तो आपका मरीज हूँ, कांग्रेस की तरफदारी करता हूँ, तो इसलिए कि कांग्रेस अंग्रेज़ों की दुश्मन है। हजरत अलामा ने फरमाया, क्या वाकई फिर अर्शाद बाद चाय पीने को जी चाहता है? हकीम साहब भी चाय पियेंगे। अली बख्श ने चाय का एहतमाम किया, चिलम बदली और हजरत अलामा को सहारा दिया कि उठ कर बैठ जाए। चाय पी गई तो हजरत अलामा ने हुक्के का कश लेते हुए फरमाया, कल डार्लिंग आए थे, कहते हैं सर सिकंदर बड़े शरीफ नफ्स इंसान हैं लेकिन कमज़ोर। नंबर एक, सर मालकम डार्लिंग हजरत अलामा के दोस्त और कदरदान, बरतानवी पंजाब में फाइनेंशियल कमिश्नर देहात, सुधार और महकमा अमदादे बाहमी से बड़ा तल्लक रहा। पंजाबी काश्तकार इनकी मशहूर और पुरइज़ मालूमात तसनीफ है। हजरत अलामा से इन्हीं बड़ा खलूस था। इस पर सवाल पैदा हुआ कि सर सिकंदर की शराफत नफ्स से तो इनकार नहीं लेकिन कमज़ोर से। सफ़ा नंबर 296, इनका मतलब क्या है? क्या ये कि इनकी हमदर्दियां लीग के साथ हैं लेकिन इतनी सख्त नहीं कि अपने रुफका समेत यूनियनिस्ट पार्टी से अलग हो जाएं, या ये के बावजूद हमीयत मिल्ली के इन्हीं हुकूमत की खुशनुदी मंजूर है, या ये कि इनमें अजायम की कमी है और वो अंग्रेज़ों से रिश्ता तोड़ सकते हैं ना कौम से। यूं गुफ्तगू का रुख यूनियनिस्ट पार्टी, लीग और कांग्रेस की तरफ फिर गया। सवाल ये था, लीग कैसे मजबूत हो? कांग्रेस का जोर पंजाब में तो है लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी ने मुसलमानों की हिम्मतें पस्त कर रखी हैं। बाय हिम्मा यूनियनिस्ट पार्टी कब तक कांग्रेस की राह में हायल रह सकती है? और रहे भी तो हमें इससे कोई फायदा नहीं। गो सरगदस्त जरूरत इस अमर की है कि कांग्रेस से बढ़कर यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त महाज कायम किया जाए। ये बातें हो रही थी कि हजरत अलामा ने चौधरी साहब से मुखातब होकर फरमाया, चौधरी साहब वो एक नजूमी जो आपसे मिला था, इसने क्या कहा था कांग्रेस का जोर कब टूटेगा? चौधरी साहब ने कहा, 1937 में। नंबर एक, कतअ नजर इस कॉल से जो चौधरी साहब किसी मनजम से मंसूब करते थे, कांग्रेस का जोर फिल वाकया 1947 में टूटा, इसलिए कि 1937 में अताए इस्लाहात के साथ जब नए दस्तूर का नफाज हुआ, इंतखाबात लड़े गए और असम्बलियों में कांग्रेस और लीग पार्टियां कायम हुई, तो कांग्रेस ने मुल्क की वाहिद नुमाइंदगी के दावे में मुस्लिम लीग को वजारत में शामिल करने से इनकार कर दिया। ये गोया इब्तदा थी इसके जवाल की। इन मानों में कि कांग्रेस की इस रवश ने कतई तौर पर साबित कर दिया था कि वो दर हकीकत हिंदू अक्सरियत की जमात है, गो बजगम खुद सारे मुल्क की नियाबत की दावेदार। सफा नंबर 297, शंबा 26 फरवरी, सुबह व शाम नशिस्त रही। चौधरी साहब, राजा साहब, मीम शीन और करशी साहब सब ही मौजूद थे लेकिन सिर्फ खबरगीरी और तीमारदारी के ख्याल से, या इसलिए कि हजरत अलामा का दिल बहलाएं, इनके लिए आराम और सुकून का सामान पैदा करें। डॉक्टर जमीयत सिंह जो दवा तजवीज़ कर गए थे जारी है लेकिन फ़ायदा है कि भी तो बहुत कम। इधर हैदराबाद से खत आया ना दवाएं आईं, ज़्यादातर तकलीफ दमे की है और ये अमर बड़ा तशवीशनाक है, नींद भी नहीं आती। डॉक्टर साहब शायद कोई मनोम दवा तजवीज़ करेंगे लेकिन करशी साहब मनोम दवाओं के ख़िलाफ़ हैं, वो अपने तौर पर कुछ तदबीर कर रहे हैं और हजरत अलामा का भी इसरार है कि एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ कोई ना कोई मरा या जवारिश तजवीज़ होती रहे, लेकिन ये इलाज दर इलाज का मामला ठीक नहीं। हजरत अलामा ने मजमून का पूछा तो अर्ज किया, आपकी तबीयत इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में संभल जाएगी, फिर मजमून भी हो जाएगा। फरमाया, बहुत बेहतर। फिर अर्शाद हुआ, उलमाए मदाहनत से काम ले रहे हैं हालांकि इनका काम था उम्मत की रहनुमाई, ये सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। फरमाया, कांग्रेसी सूबों में मुसलमानों की क्या हालत है? चौधरी साहब ने मुख्तसरन सूरत हाल बयान की, पंजाब का जिक्र आ गया। अर्शाद हुआ, सारा मामला पंजाब के जिम्मेदारों का है, पंजाब के जिम्मेदार कब समझेंगे, इन्हें कब एहसास होगा कि यूनियनिस्ट पार्टी की सियासत बड़ी नाकस है। हमने बात को तूल नहीं दिया, हजरत अलामा का इशारा शायद इस अमर की तरफ था कि सियासी एतबार से जब यह तय है कि जिम्मेदारों का ये टोला जिसे यूनियनिस्ट पार्टी कहा जाता है हमेशा हिंदुओं और सिखों की अमदाद और तावन का मोहताज रहेगा, तो ये भी मुमकिन है कि सफ़ा नंबर 298 आगे चलकर ये मोहताजी इनके इनफरादी मफाद को भी महफूज ना रख सके। इसे इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए या महज माशी फलाह व बहबूद ही के ख्याल से, इनकी रजत पसंदी में कोई शुबा नहीं था, लिहाजा कोई भी नुक्ता नज़र हो इस्लामी या महज माशी। सवाल ये था कि पंजाब का जिम्मेदार कब समझेगा, ज़िंदगी सिर्फ फसल की काश्त और गौरव पर दाख्त नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है। ये बहरहाल नहीं है कि इंसान की तवज्जो उम्र भर ज़मीन पर मुर्तकज रहे, वो मज़हब और सियासत की तरह इलम हिकतम से भी इसे कोई दिलचस्पी ना हो, जिसे बजैज़ काशतकारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। बकौल हजरत अल्लामा, पंजाब का जमींदार जमीन में दाना डालने के लिए तो बेताब रहता है, लेकिन इसकी खाक बदन दिल के दाने से महरूम है। लिहाजा इनका इरशाद है, बखाक के बदन दाना दिले फशां के ऐ दाना दारद जा हासले निशां। नंबर एक, ज़रब कलीम पंजाब के जमींदारों से। सफ़ा नंबर 299, यक शंबा 27 फरवरी। हज़रत अल्लामा के अवारज़ में कोई कमी नहीं, बेहद तशवीश है। एलोपैथिक इलाज से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ी परेशानी यह है कि हैदराबाद से ख़त आया, ना दवाएं मालूम, नहीं हकीम साहब की तबीयत कैसी है, दवाएं क्यों नहीं आ रही। सुबह हाज़र हुआ लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ मिजाज पुरसी और खबरगीरी की खातर तबीयत और अवारस का हाल पूछा तो हज़रत अल्लामा ने फरमाया, करशी साहब सुबह सवेरे ही आ गए थे, देर तक बैठे रहे और कोई दवा भी तजवीज़ कर गए हैं, नीम शीन लेने गए हैं। ये भी मालूम हुआ है कि चौधरी साहब ममूलन जल्दी ही आ गए थे, अभी दफ्तर गए हैं। मैं जब तक बैठा रहा, हज़रत अल्लामा खासे बेचैन थे, कमर में दर्द था, अली बख्श रहमा बदन दाबते, कुछ सुकून होता तो मुझसे फरमाते, अखबार क्या कहते हैं, क्या खबर है। शाम को अहबाब के साथ देर तक नशिस्त रही, लेकिन बड़ी परेशानी और बेबसी के आलम में दवा जारी है। करशी साहब भी तदबीर कर रहे हैं, डॉक्टर जमीयत सिंह भी पाबंदी से आते हैं और हजरत अल्लामा को देख जाते हैं। अवारज में कदरे तख़फीफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हजरत अल्लामा की तबीयत फिर वाक़या संभल गई हो। हजरत अल्लामा को आराम की ज़रूरत है, नींद की, लेकिन दर्द, कमर का दर्द और शाने का दर्द सोने नहीं देता। हज़रत अल्लामा की आंख लग भी जाती है तो फिर बेदार हो जाते हैं। अली बख्श शाने सहलाता, दीवाने अली से कोई काफ़ी सुनते फरमाते बातें किए जाइए, एक बार मुझसे फरमाया कोई अफसाना बयान करो। मैंने सोचा अलफ लैला में बगदाद के हजाम का जो पुरलुत्फ़ किस्सा मज़े ले लेकर बयान किया गया है, शायद हज़रत अल्लामा इसे पसंद फरमाएं, शायद यूं ही इनकी तबीयत शगुफ्ता हो जाए। सफ़ा नंबर 300, मैंने ये किस्सा बयान किया तो हज़रत अल्लामा ने फरमाया, मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी शगुफ्ता थी, इन्होंने हत्तुल वसा इसे हर आलाइश से पाक रखा, वो इससे लुत्फ़ उठाना और इसमें हुस्न व जमाल, ताकत और कुव्वत के जो लामुतनाही अम्कानात मौजूद थे, इनकी कदर करना खूब जानते थे। दाफ्तन इनका जहन आलम इस्लाम की तरफ मुंतकिल हो गया, फरमाया मुसलमानों का जवाल कैसा हसरतनाक है। और फिर जैसे एक आह भरकर खामोश हो गया, मैं भी खामोश था, फिर इस ख्याल से कि हज़रत अल्लामा सिलसिला गुफ्तगू ना छेड़ दें और ये गुफ्तगू कोई ज़्यादा संजीदा शक्ल अख्तियार ना कर ले। हाँ, जब मंसूर के ज़माने तलब इलमी का जिक्र करने लगा, जामिया करतबा में कभी तीन तालब इलम जमा थे, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में एक दूसरे की अमदाद का वादा किया था, ये वादा जिस तरह पूरा हुआ और फिर मंसूर ने जो अरूज हासिल किया, इसके तज़किरे से हज़रत अल्लामा की तबीयत में कुछ शगुफ्तगी सी पैदा हो गई। फरमाया कुछ और वाक़यात बयान करो। फिर अरशाद, व मुसलमानों में क्या कोई ऐसा अफसाना नगार नहीं जो अफसानों अफसानों ही में पते की बात कह जाए। शरर के अफसानों से बेशक तारीख में दिलचस्पी पैदा हो गई, लेकिन ज़रूरत है पते की बात कहने की। मौलाना अब्दुल अलीम शरर मरहूम। सफ़ा नंबर 301, यकम मार्च सह शंबा। सुबह हज़रत अल्लामा की खिदमत में हाज़िर हुआ, दोपहर को हाज़िरी दी, शाम को फिर हाज़िर हुआ, अलबत्ता कल गैर मामूली मसरूफियत थी, बावजूद कोशिश के जवेद मंजिल ना पहुंच सका, लिहाजा आज सुबह जवेद मंजिल में कदम रखा तो अली बख्श ने देखते ही कहा, आप कहाँ थे। डॉक्टर साहब बहुत बीमार हैं, दमे की तकलीफ़ बेहद बढ़ गई है, अली बख्श ये कह रहा था, और मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे अफसोस था, बल्कि एक तरह से नदामत के कल करशी साहब से ना मिल सका, ना इनसे हज़रत अल्लामा की खैरियत मिजाज दरियाफ्त की। टेलीफोन मौजूद था, टेलीफोन तो कर सकता था। हज़रत अल्लामा के अवारज़ ने जो शिद्दत अख्तियार कर ली है, इसकी तफसील मालूम हो जाती, और बावजूद अदीम फुरसती के हाजिर में नागा ना होता, मैं इसी एहसास को लिए हज़रत अल्लामा के कमरे में दाखिल हुआ और सलाम अर्ज करके खैरियत पूछी। तो हज़रत अल्लामा ने भी शिकायतन फरमाया, तुमने हमारी खबर नहीं ली, तुम कहाँ थे? मैं पहले ही से नादम हो रहा था, हज़रत अल्लामा बहुत कम इजहार शिकायत फरमाते हैं, उन्होंने शिकायतन ये कहा तो मेरी निदामत की कोई इंतहा न रही। हज़रत अल्लामा को ज़्यादातर तकलीफ़ शाने की दर्द की है, ज़ीक से भी परेशान है, सीधे लेटना मुमकिन नहीं, बार बार करवट बदलते हैं या फिर जानों पर तकिया रख लेते हैं और इन पस टेक देते हैं कि यूं ही कुछ आराम मिल जाए, फिर जब औंधे मुंह भी पड़े पड़े थक जाते हैं तो बैठने से कुछ आराम मिलता है, यूं ज़रा सुकून होता है तो बेइख्तियार फरमाते हैं या अल्लाह, यूं भी या अल्लाह हमेशा इनके विर्द ज़ुबान रहता है। उठते बैठते सोते जागते गुफ्तगू करते मैं खामोश बैठा था, मीम शीम भी खामोश थे और अली बख्श भी खामोश, अजब बेबसी का आलम था, हजरत अल्लामा बड़े बेचैन थे। सफ़ा नंबर 302। चंदे यही कैफियत रही, फिर जब तबीयत ज़रा संभल गई तो सीधे होकर बैठ गए और दुआ और परहेज़ का जिक्र छेड़ दिया। ज़रा और सुकून हुआ तो मुल्क की आम हालत और वक्ती सियासत पर गुफ्तगू करने लगे, कुछ इस्तफसार बैनुल अक्वामी मामलात के बारे में किए, लेकिन हम बड़े मोहतात थे, हमारी कोशिश थी कि हज़रत अल्लामा हत्तुल विसा कोई बात ना करें, लिहाजा बहुत कम किसी बात का सिलसिला आगे बढ़ा। दुआ के सिलसिले में फरमाया, डॉक्टर साहब ने दुआ बदल दी है, कहते हैं जल्द अफाका हो जाएगा। हकीम साहब भी हसबे ममूल बहुत सवेरे आ गए थे, देर तक बैठे रहे, उन्होंने भी कुछ तदबीर की है, कोई मालिश की दुआ और खूब ख्वाब आवर रोगन कुछ अरक और जवारिश, हैदराबाद से अलबत्ता कोई इतला नहीं आई, तअज्जब है। 11 बज गए, हजरत इलामा ने खाना खाया और लेट गए, ख्याल था शायद इन्हीं नींद आ जाए, इनकी तबीयत भी संभल रही थी, गलबन दवाओं का असर था, रहमा और अली बख्श बदन दापने लगे, मैंने मीम शीम से कहा घर हो आऊँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, हजरत अल्लामा तन्हा ना रहें। 2 बजे के करीब फिर हाजिर हुआ हकीम मोहम्मद अफजल साथ थे, उन्होंने नब्ज़ देखी और कहा नींद के लिए रोगने गुल की मालिश बहुत मुफीद रहेगी। हकीम साहब ने यह भी कहा कि आपको दमा नहीं है, सांस की तकलीफ है और इसका सबब है ज़ोफ़-ए-क़ल्ब। ज़ोफ़-ए-क़ल्ब के बायस दमकशी की शिकायत पैदा हो गई है। नंबर एक, हकीम साहब की तशखीस दुरुस्त थी, कर्शी साहब इसे दमी दमाए कल्बी कहते थे, यही राय डॉक्टर साहबान की थी, इनकी ज़बान में कार्डिक एस्थमा। हजरत अल्लामा की तबीयत निस्बतन बेहतर थी, हकीम मोहम्मद अफजल साहब से तिब और तिब के मुस्तकिल के बारे में गुफ्तगू करने लगे। हकीम साहब ने कहा हुकूमत को कर्शी साहब की खिदमात का इतराफ़ करना चाहिए, खिताब में यूं तो कुछ नहीं रखा, लेकिन सफ़ा नंबर 303, अगर किसी शख्स की अफादियत और काबिलियत के अतराफ़ की यही सूरत है कि इसे कोई खिताब दिया जाए तो क्यों ना इसके लिए कोशिश की जाए, इसमें क्या हर्ज है? हजरत अल्लामा ने फरमाया आपका ख्याल सही है, मैं हत्तुल विसा हर तरह से मदद करूँगा। हकीम साहब चंद मिनट और बैठे और वो तशरीफ़ ले गए तो हजरत अल्लामा ने फरमाया तिब का मुस्तकबिल जब ही मुमकिन है जब इसकी हफाजत के लिए कोई मुनज़्ज़म कोशिश की जाए, इसकी एक सूरत यह भी है कि पढ़े लिखे और समझदार अतबा बहम मिलकर कोई अदारा कायम करें, मसलन पंजाब में कर्शी साहब ही अगर इस किस्म की कोई तहरीक उठाएं तो हो सकता है कोई ऐसा अदारा कायम हो जाए और तिब के नशोनुमा की एक सूरत निकल आए। दरअसल हजरत अल्लामा तिब की ज़ुबू हाली से परेशान है, इन्हें डर है कि ये फन शरीफ कहीं मिट ना जाए, लिहाजा इनका यह ख्याल कि तिब की हफाजत के लिए कोई मुनज़्जम कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है ये कोशिश वही हजरात कर सकते हैं जिनके हाथ में इसकी बाग दौड़ है या जिनको इस फन में कोई मुमताज़ हसीयत हासिल है। अली बख्श चाय ले आया और प्याली बनाकर हजरत अल्लामा की खिदमत में पेश की, रहमे ने चिलम बदली और फिर हजरत अल्लामा की पैंती की तरफ होकर बैठा, मीम शीम आ गया, मैंने अर्ज़ किया आपका इरशाद हो तो इबन हिशाम खुतबा फतेह मक्का और जुमा खुतबा हुज्जतुल विदा के इक्तसाबात ले आऊं, फरमाया ज़रूर। शाम को इब्ने हिशाम खुतबा फतह मक्का और खुतबा हुज्जतुल विदा के इक्तसाबात लेकर हाजिर खिदमत हो गया, सलामत भी साथ था, हजरत अल्लामा की तबीयत बेहतर थी, इनको देखकर और भी शगुफ्ता हो गई, कांग्रेस के बारे में छेड़ छाड़ करने लगे, कभी कभी रहमा और अली बख्श से बदन दबवाते और कभी सीधे बैठ कर हुक्के के कश लगाते दवाओं से। सफ़ा नंबर 304, अवारज में अगरचा तख़फीफ़ हो चुकी थी लेकिन चेहरा मसमल था जिसे देखकर बड़ी तशवीश होती, गो इनकी शगुफ्ता खातरी से उम्मीद बंदा जाती के क्या अजब है इन्हीं सेहत हो जाए। नंबर एक, सैयद सलामत उल्ला मरहूम कांग्रेस के हामी थे, मगर सिर्फ आज़ादी की हद तक, यानी इस आम ख्याल के मतहत जो मुसलमानों में फैल गया था कि सरदस्त कांग्रेस से मिलकर आज़ादी हासिल कर ली जाए, बाद में हिंदुओं से भी निपट लिया जाएगा। जाहिर है ये सारा मामला जज्बाती था। 8 बज रहे थे, हजरत लामा ने खाना खाया, हुक्के के दो एक कश लिए और तकियों से टेक लगाकर सस्ताने लगे। चौधरी साहब आ गए और मीम शीम भी, वो दवाएं लेने गए थे, मिक्सचर और कुछ गोलियां। अली बख्श चाय ले आया, चाय तैयार हो रही थी कि करशी साहब आ गए। फिर राजा साहब, हजरत अलामा की तबीयत अब और भी संभल गई थी, इत्मीनान था दवाओं से मजीद फायदा होगा। देर तक नशिस्त रही, ज्यादातर गुफ्तगू मजमून की थी। एक मरतबा अरशाद फरमाया, इब्ने हिशाम और खुतबात के इक्तसाबात कहाँ हैं? मुझसे फरमाया, अल्ला फजल अल अरबी के सिलसिला में पूरा इक्तसाबात एक अलग कागज़ पर लिख कर दूँ। नंबर एक, इक्तसाबात इस खुतबा हुज्जत अलविदा अरब को अजम पर कोई फजीलत है ना अजम को अरब पर? तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था। मैंने इक्तसाबात नकल किया तो हजरत अलामा ने बतौर याददाश्त इसे अपने पास रख लिया। अली बख्श और रहमा खिदमत के लिए हाजिर थे, दर्द में कमी थी, मालूम होता था हजरत अलामा को नींद आ जाएगी। वक्त बहुत काफ़ी हो गया था, हमने इजाज़त तलब की। सफ़ा नंबर 305, 4 शंबा 2 मार्च। हजरत अलामा की तबीयत बफजला ताला बेहतर है, मैं बसबब मसरूफियत गो सपहर से पहले खिदमत से हाजिर नहीं हो सका, लेकिन करशी साहब से मिल लिया था, वो एक गोना मुतमिन थे। मैंने जब हजरत लामा से माजरत करते हुए कहा हाजिरी में देर हो गई, मिजाज पूछा, तो उन्होंने भी इत्मीनान इजहार फरमाया। अरशाद हुआ, करशी साहब और डॉक्टर साहब को तसल्ली है, मुझे सुबह हाजिर खिदमत होना चाहिएगा। सुबह हाजिर खिदमत नहीं हो सका, लेकिन हजरत अलामा को मालूम था कि मेरी मसरूफियतें क्या हैं। फरमाया, तुलू इस्लाम का क्या हुआ? मैंने सूरत हाल बयान की तो फरमाया, अभी और इंतज़ार करो, अजलत की क्या ज़रूरत है? नंबर एक, मेरा ख्याल था कि शायद तुलू इस्लाम के मुकर्रर अहया की कोई सूरत पैदा हो जाए, चंदे खामोशी रही, मैं चाहता था हत्तुल विसा कोई बात ना करो। हजरत अलामा अलबत्ता मौलाना हुसैन अहमद और कांग्रेसी ख्याल उलमा की इस रवश पर अफसोस फरमाते रहे जो उन्होंने सियासत में अख्तियार कर रखी है, और वो भी महज अंग्रेज़ दुश्मनी की बिना पर। इरशाद हुआ, ये लोग जज्बात की रो में बह रहे हैं। फिर फरमाया, मुसलमानों में एक अफरंग ज़दा तबका पैदा हो गया था, बज़ाहिर अब यही तबका इस्लाम की तरफ लौट रहा है। फरमाया, ये कैसी अजीब बात है कि कोट और पतलून के मुकाबले में, जिसे गोया दहरियत की अलामत समझा जाता था, अब सियासत और तमद्दन के वो अफरंगी तसव्वुरात जो इस्लाम की ज़िद हैं, जुब्बा और दस्तार में पनाह ले रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, आपने खुद ही तो फरमाया है। सफ़ा नंबर 306, शोखी बातल बबी अंदर कमी हक के नशीस, ये पेशन गोई पूरी हो कर रही। हजरत इलामा ने तबस्सम फरमाया, हजरत इलामा को आराम की ज़रूरत थी, उन्होंने करवट ली तो मैं कसदन खामोश हो गया। मीम शीम आ गया और हजरत इलामा के पांव दाबने लगे। अली बख्श भी बराबर खबर गिरी करता रहा, अहबाब का इंतज़ार था। थोड़ी देर में चौधरी साहब आ गए, फिर करशी साहब और राजा साहब। हजरत इलामा की तबीयत अगरचा बज़ाहिर संभल गई थी, लेकिन चेहरा बदस्तूर मखमल था। मैंने इसे देखता तो दिल में कहता, अल्लाह इन्हें सेहत दे, इन्हें कब सेहत होगी? जीक और दर्द की शिकायत में वो खासी कमी है, लेकिन नींद नहीं आती, रोगन गुल की मालिश मुमकिन है, इससे फ़ायदा हो। करशी साहब का तजवीज़ करदा रोगन अलबत्ता कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, मुमकिन है डॉक्टर जमीयत सिंह कोई और दवा तजवीज़ करें, लेकिन तजब है हैदराबाद पर, हैदराबाद से कोई इतला आई ना दवा। सफ़ा नंबर 307, जुमारात 3 मार्च, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? करशी साहब कहते हैं, हजरत अलामा की हालत बड़ी तशवीश अंगेज है, बल्कि ख़तरनाक। एलोपैथिक दवाओं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रात मनोम दवा ने तो ऐसा ख़राब किया कि हजरत अलामा पर गशी की सी हालत तारी हो गई थी और वो बेखबर में पलंग से फर्श पर गिर गया। इस वक्त शायद 4 का अमल होगा। अली बख्श तो गोया हर वक्त हजरत अलामा की चारपाई से लगा रहता है, अखरियत हुई तो वो इस वक्त कमरे ही में मौजूद था। इसने घबरा कर मीम शीम को पुकारा और फिर दोनों ने बड़ी परेशानी की हालत में हजरत अलामा को पलंग पर लिटाया, मगर घबराहट का ये आलम था कि ना तो अली बख्श को ख्याल करशी साहब आया ना मीम शीम को कि करशी साहब को इत्तला करें या डॉक्टर साहब साहबान में से किसी को बुला लें। ये दूसरी बात है कि करशी साहब इस रोज़ खिलाफे ममूल सैर से पहले ही जवेद मंजिल आ गए। उन्होंने हजरत अल्लामा की हालत देखी तो घबरा गए। फिर जो भी तदबीर बन पड़ी कि हजरत अल्लामा पर अव्वल तो देर तक दुआ का असर रहा, फिर जब होश आया और करशी साहब को मौजूद पाया तो इन्हें बड़ा इत्मीनान हुआ। करशी साहब भी जब तक हजरत अल्लामा की तबीयत नहीं संभली और इन इत्मीनान नहीं हो गया, हजरत अल्लामा की खिदमत में बैठे रहे। फिर बजाय सैर के सीधे मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। मुझे इनकी तशरीफ आवारी पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, ये वक्त तो आपकी सैर का था, इधर कैसे आना हुआ? दरअसल मैं अंदाज़ा ही नहीं कर सका था कि करशी साहब के चेहरे से तश्वीश के आसार नुमाया हैं। उन्होंने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, आप फौरन जवेद मंजर चले जाइए, डॉक्टर साहब की हालत बड़ी ख़राब है, कलब गुर्दे और जिगर सब माउफ हैं, एलोपैथिक दवाएं भी रास नहीं आईं। जेईक की वजह से फेले कलब का नुकसान, सफ़ा नंबर 308, हमें सबसे ज़्यादा ख्याल कलब का है। मैंने मुस्तरब होकर पूछा, मायूसी की तो कोई बात नहीं? उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं, मगर हालत तश्वीश अंगेज़ है। फिर इसके बाद सारा वाक्या बयान किया और कहने लगे, मैं जल्दी में हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखिए, मुझे मतलब जाना है और चंद एक दुआओं का अहतमाम करना है, आप जल्द अज जल्द डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हो जाइए और इनकी जो हालत है मुझे इसकी इत्तला कीजिए, जो खुद आइए या किसी को भेज दीजिए, ज़रूरत हुई तो मैं खुद भी आ जाऊंगा। मैं इंतहाई अजतराब और परेशानी के आलम में जवेद मंजिल पहुंचा। हजरत अलामा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ रहा था कि अली बख्श बरामदे में मिल गया। मैंने हाल पूछा तो कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, हकीम साहब आ गए और डॉक्टर साहब की तबीयत संभल गई, दुआ खिलाने जा रहा हूँ। मैं कमरे में दाखिल हुआ, हजरत अलामा बा इत्मीनान बिस्तर में लेटे थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया और तश्वीश का इजहार किया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा हूँ, पिछले पहर बड़ी तकलीफ़ हो गई थी, हकीम साहब वक़्त पर आ गए। मैंने अर्ज़ किया, करशी साहब से सारी कैफियत सुन चुका हूँ और इन्हीं के कहने से इतना सवेरे हाजिर भी हो गया हूँ, करशी साहब दवाएँ भिजवा रहे हैं, अरशाद हो तो इन्हीं बुलवा लिया जाए। फरमाया, हकीम साहब को चाहिए हसबे ममूल तिब में बैठे, मैं अच्छा हूँ, इनके आने की ज़रूरत नहीं, और भी तो मरीज़ हैं, इन्हीं सब को देखना होगा, ज़रूरत महसूस हुई तो दोपहर में बुलवा लिया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, मालूम होता है आपको एलोपैथिक इलाज मुवाफक नहीं आया, यूँ भी आपको ये तरीका इलाज पसंद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की को तकलीफ़ हुई, इसकी वजह वो मनूम दवा थी जो आपने इस्तेमाल फरमाई? सफ़ा नंबर 309, अरशाद हुआ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि तकलीफ़ क्यों हुई, इसका फ़ैसला तो डॉक्टर साहबान ही कर सकते हैं। बहरहाल मैंने तय कर लिया है कि एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल नहीं करूंगा, हकीम साहब जो तदबीर करेंगे इसी पर अमल रहेगा, आज भी इन्हीं की दुआ से बड़ा फ़ायदा हुआ है। अरक गुल गौ जुबान तो बहुत रास आता है। फिर अरशाद हुआ, हैदराबाद से कोई इतला नहीं आई। मैंने अर्ज़ किया, हकीम साहब की खामोशी बाइस तजब है, लेकिन हकीम साहब इतनी दूर बैठे आपकी तबीयत का कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं? इन्हीं क्या मालूम अब आपके अवारस की हकीकी नवीयत क्या है, या फिर ये कि मुफसल ख़त लिखा जाए ताकि इन्हीं भी मालूम हो जाए कि इनकी दुआएं ना आने से मजबूरन इलाज बदलना पड़ा, लेकिन तब्दीली इलाज का असर अच्छा नहीं हुआ, एलोपैथिक दवाएं मुवाफक नहीं आती। फरमाया, तुम्हारी तजवीज़ नहायत मौजू है, कागज़ कलम लो और फौरन हकीम साहब को मुफस्सल ख़त लिखो। मैं कागज़ कलम लेकर एक तरफ बैठ गया, हकीम साहब की खिदमत में मुफस्सल ख़त लिखा और इसका लुबे लबाब हजरत अलामा की खिदमत में अर्ज़ कर दिया। हजरत अलामा ने इत्तफाक़ फरमाया, इरशाद हुआ, आज क्या खबर है? फिर फरमाया, मजमून क्या तुमने देख लिया? मैंने अर्ज़ किया, चौधरी साहब ने कहा तो था कि मजमून एक आध रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, आपकी तबीयत अच्छी हो जाए तो फिर हम सब मिलकर देख लेंगे, आपका भी तो यही इरशाद था, अलावा अजी आपको पूरा मजमून भी तो सुनना है। सफ़ा नंबर 310, हजरत अलामा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, गो इनका भी यही ख्याल था कि तबीयत संभल जाए तो फिर इत्मीनान मजमून पर गुफ्तगू की जाए। हजरत इलामा खामोश लेटे बैठे थे, जीक की तकलीफ़ थी मगर बहुत कम और ये अमर बड़ा तसल्ली बख्श था। फिर मालूम नहीं क्या ख्याल आया कि किसी कदर ज़्यादा सीधे होकर बैठ गए, हुक्के के एक दो कश लिए और फरमाया, शाह साहब ठीक कहा करते थे, बा अव्वल बा आखर नस्बते दारद, आज मालूम हुआ है इनका ये कहना नहायत सही था। नंबर 1, हज़रत अल्लामा के उस्ताद मोहतरम मौलाना मीर हसन, शायद इनका इशारा इस इरशाद कुरानी की तरफ था। अल रोम 54। ये कहकर हजरत अलामा ने फिर तकियों पर सर टेक दिया। मैं नहीं समझा अव्वल व आखिर से इनका इशारा किस तरफ था, ना मैंने पूछने की जरूरत की। मुझे डर था कि गुफ्तगू से दम कशी ना होने लगे, जोफ व अजमा लाल ना बढ़ जाए। दोपहर हो रही थी। अली बख्श ने कर्शी साहब का भेजा हुआ कोई खमीरा या मजून खिलाई और फिर थोड़ी देर के बाद हजरत अलामा ने हल्का सा खाना भी खाया। मैंने अर्ज किया आपका रिशाद था, कर्शी साहब को मतलब करने दिया जाए, इनके आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कर्शी साहब को मेरा इंतज़ार होगा, इजाज़त हो तो मैं जाऊँ और इनसे आपके मिजाज की कैफियत बयान करूँ। फरमाया ज़रूर जाओ और इनसे कह दो मेरी तबीयत खुदा के फजल से इतनी अच्छी है कि जिस मसले पर चाहें 3 घंटे मुसलसल तकरीर कर सकता हूँ। मैं हजरत अलामा की ख्वाबगाह से बाहर निकला, मीम शीम का पूछा, मालूम हुआ कहीं बाहर गए हैं, लिहाजा अली बख्श से कहा हजरत अलामा के पास चला जाए। हजरत अलामा तन्हा हैं और इन्हें तन्हा छोड़ना नामुनासब नहीं। सफ़ा नंबर 311। करशी साहब से मिला, हजरत अलामा की कैफियत मिजाज बयान की। उन्होंने कहा हजरत अलामा का अर्शाद बजा है लेकिन सूरत हाल अंदेशा नाक है, हमें मुतात रहना चाहिए। दिन भर तशवीश में गुजरा, शाम के करीब जुवेद मंजिल पहुंचा, सलामत साथ थे, हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया जब से तुम गए हो तबीयत संभल रही मगर अब दिल डूब रहा है, शाह साहब मेरे पास बैठेंगे, तुम हकीम साहब को ले आओ। नंबर 1, सलामत उल्ला शाह साहब को हजरत अलामा शाह साहब ही कहते थे। मैंने अर्ज़ किया बहुत बेहतर और जुवेद मंजिल से निकलकर रेलवे दफ्तर का रुख किया तो रास्ते में राजा साहब और मौलवी अब्दुल रहमान मिल गया। राजा साहब को हजरत अलामा की हालत का मतलब इलम नहीं था। मुझसे सारी कैफियत सुनी तो बेकरार हो गया। मैंने कहा कि जल्दी कीजिए, हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हो जाइए, सलामत मौजूद हैं, चौधरी साहब आए होंगे, मैं कश्ती साहब को ले आऊँ। नंबर 2, वतन कोहोटा राजा साहब के दोस्त। कर्शी साहब के यहाँ पहुँचा तो घर पर नहीं थे, मैं समझा कॉलेज में होंगे, कॉलेज गया तो वहाँ भी नहीं मिले, फिर सोचा शायद जुवेद मंजिल पहुँच गए हों, इन्हीं हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर होना तो था ही। जुवेद मंजिल पहुँचा तो अली बख्श ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है दिल की तकलीफ जाती रही, दिल की हालत अब अच्छी है, शाह साहब और चौधरी साहब हजरत अलामा के पास बैठे हैं, राजा साहब अलबत्ता कर्शी साहब को लेने गए हैं। मुझे तज्जब था कर्शी साहब क्या हुआ, फिर सोचा आते ही होंगे, राजा साहब के पास गाड़ी है आसानी से तलाश कर लेंगे। सफ़ा नंबर 312, मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हजरत अलामा को फिल वाक़े बहुत बेहतर पाया, चौधरी साहब और सलामत से बातें हो रही थी, मीम शीम और रहमा बदन दाब रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कर्शी साहब को हर कहीं देखा, घर में कॉलेज में, लेकिन घर पर मिले न कॉलेज में, फिर भी ख्याल है आते ही होंगे, राजा साहब साथ हैं। हजरत अलामा बड़े इत्मीनान से लेटे थे, ज़्यादातर खामोश, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हकीम साहब कहाँ हैं, राजा साहब क्यों नहीं आए, 8 बज चुके थे। अली बख्श ने कहा खाना खा लीजिए, फरमाया भूख तो कुछ ऐसी नहीं है मगर ले आओ। हजरत अलामा ने खाना खाया और चाय के लिए कहा, हमने कहा बेहतर है कर्शी साहब का इंतज़ार कर लिया जाए। हजरत अलामा फिर लेट गए, कभी कभी कोई बात कर लेते, हमसे कहते कोई बात करें। 9 बज गए, तज्जब था राजा साहब कहाँ हैं। कुछ और वक़्त गुजरा, हत्ता के कर्शी साहब आ गए, राजा साहब और मौलवी अब्दुल रहमान के अलावा हकीम मोहम्मद अफजल और राहत बुखारी भी साथ थे। हमने इत्मीनान का सांस लिया। हजरत अलामा ने फरमाया हकीम साहब आप कहाँ थे, आपका बड़ा इंतज़ार रहा। नंबर 1, तकसीम से पहले ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में बसिलसिला देहात सदहार राजा साहब के शरीके कार थे, जमाना जंग में बाहर चले गए और अब भी शायद बैरून मुल्क ही में कहीं मुकीम हैं। कर्शी साहब ने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हाज़िरी में देर होगी, मुझे बराबर ख्याल था हाज़िरी में देर ना हो जाए, लेकिन दुआओं का अहतमाम करना था, बाद दुआओं के तलाश में देर लगी।